الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں معروف قرآن سے، جلد نمبر 5 ہے اس کی، اس میں سورہ یوسف ہے اور یہ جو آیات تلاوت کی گئیں ان کا ہم ترجمہ پڑھ چکے تھے، 30 سے لے کر 35 آیت، اور آج خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کر رہے ہیں. خلاصہ تفسیر معروف قرآن کے اندر حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے لی. تو بیسیکلی بیان القرآن ہی ہے خلاصہ تفسیر کے اندر جو کچھ ہے. پھر اس کے بعد معارف و حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے پھر اپنی تحقیق ہوتی ہے. تو خلاصہ تفسیر میں یہ جو بین السطر یعنی انڈر لائنڈ الفاظ ہوتے ہیں یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور پھر جو بین القوسین یعنی ود ان دا بریکٹس جو عبارت ہوتی ہے وہ خلاصہ تفسیر ہوتی ہے یعنی وہ مختصر تفسیر ہوتی ہے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ وقال نسوة فی المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسہ، اس کے تحت کہ اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی، عزیز کی امرأة یعنی اس کی عورت، اپنے غلام کو اس سے اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلاتی ہے. اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلاتی ہے میں تفسیر یہ ہے کہ ناجائز مطلب، اس لیے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی نکاح والا تعلق ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، تو پھر یہ ناجائز ہی ہوا. بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ یہ کرتی ہے تو وہ ناجائز نہیں ہوتا بلکہ وہ جائز ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کیسی کمینی حرکت ہے، یعنی گویا کہ وہ عورتیں اس طرح سے آپس میں بات کر رہی تھیں کہ کتنی نیچی نچلی اور گری ہوئی حرکت ہے کہ غلام پر گرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی پہ فریفتہ ہونا ہی تھا تو کوئی راک سٹار ہوتا، کوئی پاپ سٹار ہوتا، کوئی بڑی شخصیت ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر تو ساری دنیا مرتی ہے. آج کل تو کم از کم پہلے بھی ہوتا ہوگا اس طرح، لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا کہ جتنا کہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ جو سب سے یعنی جو اصل میں راک سٹار پاپ سٹار تو ہم آج کے حساب سے بول رہے ہیں نا کہ بڑی شخصیت، لیکن پرانے زمانے میں یہ راک سٹار اور پاپ سٹار جو ہوتے تھے یہ سب سے کمینے لوگ ہوتے تھے، سب سے گھٹیا لوگ جو ہے نا وہ معاشرے کے یہ گانے بجانے والے اور کھیل کود کرنے والے لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس زمانے کے حساب سے تو میری بات صحیح نہیں ہوگی کہ غلام پہ مرتی ہے، مرنا چاہیے تھا تو راک سٹار پہ مرتے. اس زمانے کے حساب سے بات صحیح یہ ہوتی کہ بادشاہ پہ مرتی یا جو ہے وہ کسی اس قسم کی کسی شخصیت کے اوپر مرتی جس کی عزت ہے معاشرے کے اندر. لیکن آج کے حساب سے آج کی ڈیفینیشنز بدل گئیں، آج کل ان گھٹیا لوگوں کو جو ہے وہ ایسا بنا دیا ہے کہ سب مرتے ہیں ان کے اوپر. تو بہرحال غلام کے اوپر مرنا اپنے یعنی جیسے کہ آج کل جو ہے نا وہ بھائی کام کرنے والی کے اوپر کوئی سیٹ صاحب جو ہے نا وہ گھر کی ماسی کے اوپر مرنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے عجیب بات سمجھ جائے گی اس کو. اسی طرح سے یہ ہے تو فرمایا کہ کیا ایسی کمینی حرکت ہے کہ غلام پر گرتی ہے، اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے. ٹھیک ہے، قد شغفہا حبا، شغف تو وہ اس کے محبت جو ہے نا وہ اس کے شغف بن گئی ہے. تو ہم تو اس کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں، ठीक है, यानी कितना क्रिटिकल हो रही है उसके लिए। मीरासी कहकर ताना दिया जाता था। हाँ, पहले मीरासी कहकर ताना दिया जाता था, आजकल जो मीरासी है ना वो असमाए हुस्ना, असमाए हुस्ना पढ़ रहे होते हैं अपने ढोल धमाके के साथ। कराची के इस मुख्तसर से ट्रिप के अंदर वही चीज सामने आई, नजर आई, जो कि दूर से बैठ करके हम देख रहे थे, लेकिन अब सामने भी देखा वही बात कि दीन ही दीन गालिब आ चुका है। हर चीज में दीन, हर चीज में दीन है। हवाएं नहीं बल्कि अब तो झक्कड़ चल रहे हैं दीन के, कराची के अंदर और जाहिर है बाकी इलाकों के अंदर ही दीन के झक्कड़ चल रहे हैं, आंधियां चल रही हैं दीन की, ठीक है ना। लेकिन वो क्या मतलब, कौन से वाले दीन की, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा वाला दीन नहीं बल्कि 21वीं सदी वाला दीन, के ऐसे ऐसे जो है वो यानी गाने लगे हुए होते हैं जिनके अंदर जो है वो असमाए हुस्ना भी हो रहे होते हैं और नाते भी हो रही होती हैं, और अजीब गरीब किस्म का हाल है। फिर थोड़ी देर में जो है वो वेस्टर्न म्यूजिक शुरू हो जाती है, फिर थोड़ी देर में जो है वो फिर असमाए हुस्ना की म्यूजिक शुरू हो जाती है, और फिर उसकी म्यूजिक शुरू हो जाती है, उसकी म्यूजिक है बस जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल नहीं करके बाकी हर चीज जायज हो गई। एनीवे, तो आजकल के मीरासी जो है ना वो फिर नाते पढ़ रहे हैं, मरासी, सॉरी मीरासी नहीं कहते, मरासी कहते शायद। तो बहरहाल, तो इन्ना लनराह फी ज़लाल मुबीन। तो अच्छा, ये बात हमारे ऊपर भी पूरी उतरेगी अगर हम भी जो है ना वो दूसरों के लिए क्रिटिकल और खुद जो है वही वाली हरकतें करना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये औरतें क्या कर रही थी कि इंतहाई क्रिटिकल ऑफ इमरातुल अजीज, कि कितनी बुरी बात है और कितने घटिया हरकत कर रही है और क्या कर रही है। थोड़ी देर में देखिएगा इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा भी अगर यही हाल है तो हम भी इनसे ज्यादा बेहतर नहीं है। क्या आज जो है ना वो किसी की मौसीकी के ऊपर उसको उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल को मौलवी साहब जो है वो खुद ही मौसीकी अपनी इलेक्शन मुहिम के अंदर मौसीकी, राइट। तो जब दुनियादार करे मौसीकी तो बुरा है, और दीनदार करे मौसीकी तो दीन की खातिर जायज हो जाती है। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है, हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला दीनदारों की हिफाजत फरमाए और इस गड्ढे में गिरने से उनको बचाए, ठीक है, क्योंकि ये गड्ढा जो है ना ये बहुत गहरा गड्ढा है। दीनदार जो है ना वो बदकिस्मती से बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं, बेचारे भोले भाले बड़े साला सादे से लोग होते हैं, वो समझते हैं कि ये ना दुनिया वालों को हम अपनी तरफ कर लेंगे, थोड़ा सा उनका स्टाइल अपना करके हम उनको अपनी तरफ कर लेंगे। उनको ये नहीं पता होता, या वो भूल जाते हैं किसी वजह से, ये जो दुनिया वाले हैं ना ये उनको बेच के खा जाएंगे। समझते हैं, ये मुहावरा सुना है कभी, बेच के खा जाएंगे, ठीक है ना, और डिकार भी नहीं लेंगे। ये दुनिया वालों को खुश करने की खातिर अगर दीन को कॉम्प्रोमाइज किया है ना, तो ये दुनिया वाले दीनदारों को बेच के खा जाएंगे और डिकार भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बचना चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि दीन की तफसीलात इन्हीं के पास है, हम लोगों के पास दीन की तफसीलात नहीं है। हमने हमने अपना अपनी जिंदगी नहीं खर्च करी इनकी तफसीलात में जाने में, दीन की तफसीलात में, दीन की तहकीक में, दीन के उलूम की गहराई में जाने में हमने अपनी जिंदगी नहीं खर्च करी, इस वजह से हमें नहीं पता, ठीक है। हमारे पास ये इल्म नहीं है, जिनके पास है ना उनके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, क्योंकि अगर उनके पास से भी ये खत्म हो गया ना तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे फिर, उसके पास हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो फरमाते हैं कि फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना, तो इसने जो है ना वो इन लोगों ने, इन औरतों ने फिर खूब जो है ना वो क्रिटिसाइज किया उसको, कि हम तो उसको सारी गलती में देखते हैं। तो जब उस औरत ने इन औरतों की बदगोई की खबर सुनी तो किसी के हाथ उनको बुला बुला भेजा कि तुम्हारी दावत है, और उनके वास्ते मसनद तकिया लगाया, और जब वो आई और उनके सामने मुख्तलिफ किस्म के खाने और फल हाजिर किए जिनमें बास चीजें चाकू से तराश कर खाने की थी, ठीक है, इसलिए हर एक को उनमें से एक एक चाकू भी दे दिया, जो जाहिर में तो फल तराशने का बहाना था, यानी चाकू पकड़ा है, यानी कोई एप्पल टाइप की कोई चीज होगी कि जिसको के छुरी से आपको काटना पड़ता है, कीनू नहीं होगा, कीनू को तो हाथ से ही छील लेते हैं ना, या दूसरे किस्म का ऑरेंज होगा जिसको छुरी से काटना होता है। बहरहाल तो इस तरह की कोई चीज दी और काटने के लिए एक चाकू भी दे दिया, जो जाहिर में तो फल तराशने का बहाना था कि भाई आप इसे तराशिएगा, और असल मकसद वो था जो आगे आता है कि ये हवास बाख्ता होकर अपने हाथों को जख्मी कर लेंगी। यानी इतना ज्यादा अपने हवास खो बैठेंगी कि उस फल में और अपने हाथ में अपनी उंगली में, जैसे कि खवातीन अक्सर जब काम कर रही होती है ना किचन के अंदर, तो आपने देखा होगा कि ऐसा किसी चीज में मगन होकर के जो है ना वो छुरी से कभी हाथ कट जाता है, कभी जो है वो चूल्हे से जो है वो यानी गर्म पतीली में हाथ लग जाता है तो हाथ जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो उसके ऊपर फिर बड़े कहते हैं कि नहीं, तवज्जो से काम करो, तवज्जो तुम्हारी कहीं और चली गई होगी। और ठीक है, तो तवज्जो चली जाने से इतना बड़ा बड़ा नुकसान भी इंसान कर बैठता है, तो इन लोगों की तवज्जो हटेगी और ये जो है ना अपना हाथ काट लेंगी। और ये सब सामान दुरुस्त करके जब ये सब कुछ अपनी जगह पे सेट हो गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो किसी दूसरे मकान में थे कहा कि जरा इनके सामने तो आ जाओ। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ये समझ कर कि कोई सही गर्ज होगी बाहर आ गए। ठीक है, उस जमाने में पर्दे के अहकाम तो थे नहीं, तो अब पर्दा मर्दों के ऊपर तो होता नहीं है, पर्दा मर्दों के ऊपर तो होता नहीं है, पर्दा तो औरतों के ऊपर फर्ज है। लेकिन जिन मर्दों को अपनी इफ्फत और इस्मत की हिफाजत करनी होती है ना, तो फिर वो औरतों से पर्दा करते हैं। हमारे हजरत जी दामत बरकातहुम, हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहुम ने हमें नसीहत फरमाई कि औरतों ने तुमसे पर्दा नहीं करना, बल्कि फरमाया औरतों ने हमसे पर्दा नहीं करना, हमने औरतों से पर्दा करना है। यानी क्या मतलब है इसका? मतलब शरीयत बदल नहीं गई, मतलब इसका कहने का यह है कि कंप्लेन मत करना कि औरतें पर्दा नहीं करती तो मैं क्या करूं, है ना, औरतें पर्दा नहीं करती सामने आ जाती हैं तो अब मैं कैसे अपनी निगाहों की हिफाजत करूं, राइट? नहीं, डोंट कंप्लेन, बल्कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो, ऐसे अपने आप को बना के रखो कि गोया कि वो औरत एग्जिस्ट ही नहीं करती तुम्हारे सामने, बेशक तुम्हारे सामने आ जाए। ठीक है ना, तो उनको बंद करने की कोशिश, वो तुम्हारी अगर तुम्हारी जरूरियत में है तो फिर तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, फिर उनको पर्दा कराना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, लेकिन हर औरत तुम्हारी जरूरियत में नहीं है, तो इस वजह से ना दूसरों को पर्दा कराने की बजाय खुद अपनी निगाहों की और अपने सोचों की और अपने अफकार की और अपने दिल की हिफाजत करो। ठीक है ना, तो ये मतलब है इस बात का कि औरतों ने हमसे पर्दा नहीं करना, हमने औरतों से पर्दा करना है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो यानी उसी कैटेगरी के इंसान थे ना जो कि दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपने आप को बचाने वाले थे। तो इस वजह से अगर इनको पता होता ना कि ये इस मकसद से बुला रही है तो ये शायद ना आते बाहर, बल्कि इनको पता ही नहीं था। तो इस वजह से हजरत ने तफसील लिखी कि ये समझ करके कि भाई कोई काम होगा तो इस वजह से बाहर आ गए। सो औरतों ने जब उनको देखा तो उनके जमाल से हैरान रह गईं और इस हैरत में अपने हाथ काट लिए, यानी चाकू से फल तराश रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे बदहवासी छाई कि चाकू हाथ पर चल गया और कहने लगी, हाशा लिल्ला, ये शख्स आदमी हरगिज नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। ठीक है, तो वो औरत बोली, अच्छा ये हमने बड़े लोगों से सुना कि हमारे जो दादा पीर गुलाम हबीब रहमतुल्लाह थे ना, तो उनको देख करके जो इल्म वाले लोग होते थे जिनको कुरान मजीद की इस आयत का पता होता था ना, वो उनको देख करके ये वाली आयत पढ़ा करते थे। ठीक है, मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ऐसे खूबसूरत और ऐसे लंबे चौड़े सुर्ख व सफेद जो है वो अल्लाह ताला ने उनको शख्सियत दी थी, इनको देख करके लोग ये पढ़ा करते थे। तो बहरहाल वो औरत बोली, तो देख लो वो शख्स यही है कि जिसके बारे में तुम मुझको बुरा भला कहती थी कि अपने गुलाम को चाहती है, और वाकई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की ख्वाहिश की थी, मगर ये पाक साफ रहा। ठीक है, औरतें जो है ना वो दूसरी औरतों के सामने अपना राज खोल देती हैं, इनसे नहीं रहा ज्यादा पेट में ज्यादा देर तक ये बात रख नहीं पाती हैं, तो इसने जो है वो सीधा सीधा बात कर दी कि ऐसे ही है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के धमकाने और सुनाने को कहा कि अगर आइंदा मेरा कहना ना मानेगा जैसे कि अब तक नहीं माना, तो बेशक जेल खाना भेज दिया जाएगा और बेइज्जत भी होगा। ला युसजनन्ना वला यकूनम मिन सागरीन। ठीक है, वो औरतें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी, यह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो तफसीरन बयान फरमा रहे हैं कि औरतें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि तुमको अपनी मोहसिन औरत से ऐसी बेएतनाई मुनासिब नहीं है, जो ये कहे उसको मानना चाहिए। ठीक है, अब देखें कैसा पलटा खाई है। थोड़ी देर पहले जो है वो इसको ब्लेम कर रही थी, और ये कैसी घटिया है, कैसी वो है, कैसी ये है, और जब हुस्न देखा तो हुस्न जाहिर के ऊपर खुद भी फिसल गई। ठीक है, और जो है ना वो यानी उसके जो जो जुलैखा के यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर दुनियावी एहसानात थे ना, कि भाई अपने घर के अंदर जगह दी हुई थी, वैसे तो शौहर के ये गुलाम थे लेकिन बहरहाल बीवी का भी शौहर के अमला के ऊपर कुछ ना कुछ हक तो होता है, तो उन एहसानात को गिनवा करके, उन एहसानात को बयान करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगी कि तुम अल्लाह के एहसान को भूल जाओ, अल्लाह के एहसान को भूल करके अल्लाह ताला की नाफरमानी कर लो। ठीक है, तो ये जिसकी नजर दुनिया के ऊपर होती है ना, वो यही काम किया करता है। जिसकी नजर दुनिया पर होती है, जिसके दिल के अंदर दुनिया समाई हुई होती है ना, तो वो ऐसे ही काम करता है कि दुनिया के एहसानात उसको बड़े लगते हैं, दुनिया वालों के एहसानात उसको बड़े लगते हैं, और जो असल मोहसिन हकीकी है उसके एहसानात जो है ना वो उसको भूल जाते हैं, उसकी निगाहों से ओझल हो जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने भी यही काम किया। मोहसिन औरत है तुम्हारी, तुम्हारे लिए उसने अपना घर पेश कर दिया है, तुम्हें अपने घर के अंदर रखी हुई है, तुम्हें खाना भी देती है, तुम्हें पीना भी देती है, तुम्हें लिबास भी देती है, ये वो है ना, आसमान जमीन के कुलाबे मिला करके जिस तरह से बात करते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी कि ये तो सब की सब उसी के मुवाफिकत करने लगी, तो हक तआला से दुआ की, अल्लाह तआला की तरफ रुजू किया। ठीक है, और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वुजू करें, फिर उसके बाद जानमाज बिछाएं, फिर उसके बाद हाथ उठाएं, फिर उसके बाद जो है वो आंसू बहाएं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से रुजू करें। नहीं, बिल्कुल चलते फिरते जिस सिचुएशन में इंसान है उसी सिचुएशन के अंदर अल्लाह ताला से रुजू। अल्लाह ताला को कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है इसके अंदर, बंदे ये दुआ के लिए कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है। ठीक है, तो हर वक्त दुआ, हर वक्त दुआ। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया गालबन सुनाते हैं या उनके किताब में लिखा हुआ है कि जब उनके सामने कामकाज के अंदर दफ्तर के अंदर बैठे होते थे, अपने मदरसे में बैठे हुए, मकतब में बैठे हुए, और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कोई फैसला करना है, ठीक है ना, दो राह है, कोई मल्टीपल ऑप्शन है, उनमें से कोई ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है, फौरन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होकर के ना, अल्लाहुम्म अख़्ज़िरली वाख़्तरली, अल्लाहुम्म अख़्ज़िरली वाख़्तरली, ये जो इस्तिखारी की दुआ है वो फौरन दिल के अंदर पढ़ लिया, एक लम्हे के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गए, और उसके बाद फिर जो दिल में आया वो फैसला किया। ठीक है ना, अब जो दिल में आया फैसला किया का मतलब ये नहीं है कि असबाब को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया, नहीं, बल्कि असबाब के ऊपर गौर भी किया, चीज़ों को भी देखा, सिचुएशन को मुताले भी किया, लेकिन फैसला करने से पहले एक लम्हे के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू भी कर लिया और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी। ठीक है, तो इसके लिए मुसल्ला बिछाने की कोई कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर मौका है वक्त है तो मुसल्ला बिछा कर भी दुआ कर लें। ठीक है, पिछले दिनों आपकी आप में से अक्सर की जो खवातीन होती हैं घरवालियाँ, तो वो जो सुबह की जो क्लासेस होती हैं तो उसके अंदर ये बात निकल पड़ी थी कहीं से, मुझे वो कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन लेकिन बात क्या थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन बात ये थी कि जैसे आप जब कभी किसी शॉपिंग एरिया में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं ना, तो फकीर आ जाते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान इंडिया में तो आते ही हैं, इवन अब सऊदी अरब के अंदर भी हारा वारा के इलाके के अंदर खूब फकीर जो है ना वो आपके आप यानी पीछा आपको छोड़ते नहीं, फिर उसके बाद मुस्तकिल मांग रहे हैं, मुस्तकिल जो है वो कह रहे हैं। हाँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की वो बेहश्ती जेवर पढ़ रहे थे ख्वातीन की क्लास के अंदर, तो वहां पर जो है ना वो नियतों को जमा करने का बयान हो रहा था कि ये चीज सही नहीं है कि हम एक काम के अंदर दुनिया की नीयत और दीन की नीयत दोनों को जमा करें, कि भाई वुजू करने से जो है ना वो ठंडक भी मिल जाएगी और वुजू करने का भी सवाब मिल जाएगा, राइट। या जो है वो रोजा रखने से जो है वो मेरा पेट का मर्ज भी ठीक हो जाएगा और जो है वो रोजे का सवाब भी मिल जाएगा। तो उसी में हजरत ने लिखा था कि फकीर को पैसा देते हुए ये नियत करना कि इससे जान भी छूट जाएगी, क्योंकि ये जान छोड़ नहीं रहा पैसे लिए बगैर, जान भी छूट जाएगी और जो है वो सदके का सवाब भी मिल जाएगा। तो उसके ऊपर बात हो रही थी कि इस तरीके से जब कोई फकीर पीछे लग जाते हैं ना, तो अब जो है वो जान छुड़ाने के लिए उसको रुपया दो रुपया, रियाल दो रियाल दे देते हैं कि भाई जान छूट जाए, ठीक है। तो ऐसे मौके के ऊपर भी जो है ना, एक अच्छा मोमिन जो होता है ना, वो एक बेहतरीन ताजर भी होता है, बेहतरीन बिजनेसमैन होता है। और बेहतरीन बिजनेसमैन जो होता है ना, वो अपनी रिसोर्सेस को जाया नहीं होने देता, अपनी रिसोर्सेस को जाया नहीं होने देता। तो ये जो 2 रियाल या 2 डॉलर या 2 पाउंड किसी फकीर को दिए हैं ना जान छुड़ाने के लिए, जान छुड़ाने की नीयत से अगर दिए हैं, सदके का सवाब नहीं मिलेगा, सदके का सवाब नहीं मिलेगा। तो 2 रियाल जाया हो गए आपके। एक अच्छा मोमिन 2 रियाल जाया नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि वो जब पैसा दे रहा होता है ना, अगरचे कि जान छुड़ाने के लिए पैसा दे रहा है, लेकिन उस वक्त वो अगर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाए ना, और ये अल्लाह ताला से राजो न्याज कर ले कि ए अल्लाह, मेरी इस वक्त तो मेरे ऊपर जो गालिब नीयत है ना, वो तो जान छुड़ाने वाली नीयत है, लेकिन ए अल्लाह, अगर आप इसको नेकी सदके के लिए तौर पर भी कबूल कर लें, तो ए अल्लाह, मेरा ये फायदा भी हो जाएगा, आपके खजाने में कोई कमी नहीं होगी, मेरा ये फायदा भी हो जाएगा और आपके खजाने में कोई कमी भी नहीं होगी, मैं आपकी जात से उम्मीद रखता हूं कि आप इसको सदके के लिए भी कबूल कर लें। तब जो है ना, जान भी छूट जाएगी उस फकीर से और सदके का सवाब भी यकीनन मिल जाएगा, यकीनन मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये कोई डिमांड नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहा है और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रख रहा है और अल्लाह ताला से उम्मीद कर रहा है, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है ना, वो अपने उम्मीदों के ऊपर किसी को मायूस नहीं करते, अपने से उम्मीद रखने वाले को मायूस नहीं करते, ठीक है ना। तो फकीर को पैसा दे रहे हैं और जो है वो फिर गाड़ी बंद करके जो है वो कहीं जाना है, उस वक्त अल्लाह ताला से रुजू करके दो चार बातें कर लें, जाया होने से बच जाएंगे, वक्त भी जाया होने से बच जाएगा और माल भी जाया होने से बच जाएगा। तो कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर भी हमें इसी बात का सबक दिया जा रहा है कि अपनी हर सिचुएशन के अंदर एक तार जोड़ लो, हमारे मशायख उसको कहते हैं तार जोड़ लेना, ठीक है। तो बस अल्लाह ताला से तार जोड़ लिया बंदे ने, फिर अल्लाह ताला तो भाई हर चीज के मालिक हैं, हर चीज को जानने वाले हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी कि ये तो सब के सब उसी की मुवाफ़क़त करने लगी, तो हक ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, जिस नाजायज काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो जेल खाने में जाना ही मुझको ज्यादा पसंद है, और अगर आप उनके दाव पेच को मुझसे दफा ना करेंगे तो मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और नादानी का काम कर बैठूंगा। सो उनकी दुआ उनके रब ने कबूल की और उन औरतों के दाव पेच को उनसे दूर रखा, ठीक है। हमारी जिंदगी में बेशुमार ऐसे मौके आते हैं, झूठ का मौका, झूठ, ठीक है। अब छोटी सी कोई सिचुएशन पड़ जाती है ना हमारे पास, हमारे लिए कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाती है ना, हम इमीडिएटली हमारा रुजू जो है ना वो शैतान की तरफ हो जाता है, इमीडिएटली हमारा रुजू शैतान की तरफ होता है और हम झूठ बोल करके उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, हालांकि दीनदार होते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा दीनदार होते हैं, लेकिन अजीब मामला है, हम सिचुएशन से निकलने के लिए फौरन झूठ बोलते हैं और सोचते भी नहीं है कि हम गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं, और झूठ जैसे गुनाह कबीरा को हम कितना हल्का समझ रहे हैं, गोया कि एक गुनाह नहीं, उससे बढ़ करके गुनाह के गुनाह को इतना हल्का समझ लिया कि अगर थोड़ा सा अकल इस्तेमाल कर लेते, थोड़ा सा सोच लेते, तो झूठ बोले बगैर भी उस सिचुएशन से निकला जा सकता था, लेकिन दो वी डोंट इवन गिव इट अ थॉट, वी डोंट इवन गिव इट अ थॉट कि दूसरा कोई रास्ता तलाश करें, ये कैसे हो सकता है कि मैं झूठ बोल दूं, नहीं, हम इमीडिएटली झूठ का रास्ता अपनाते हैं, तो क्या उसी वक्त जो है वो, अगर हम अपने अल्लाह से रुजू कर लें कि ए अल्लाह सिचुएशन मुश्किल आ गई है और शैतान मुझे कह रहा है कि मैं झूठ बोल दूं, लेकिन ए अल्लाह झूठ बोलना तो आपकी नाफरमानी है, गुनाह कबीरा है, आपका हक मारना है झूठ बोलना, क्योंकि सिचुएशन आपने ऐसी नहीं बनाई थी, सिचुएशन तो आपने कुछ और बनाई थी, मैं झूठ बोल करके वैसा बना दूं जैसा कि वो आपने नहीं बनाई थी, ये आपका हक मारना है। अल्लाह मैं नहीं करना चाहता ये काम, आप मुझे कोई ऑल्टरनेटिव सच्चाई का रास्ता दिखला दीजिए, राइट? तो हम अल्लाह ताला की तरफ कैसे नहीं रुजू कर सकते, क्यों नहीं रुजू कर सकते, अल्लाह ताला से मदद क्यों नहीं मांग सकते? क्या पैसे जाते हैं इसके अंदर? क्या आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है? क्या आपको जाकर गुसल करके आना पड़ेगा उसके लिए? क्या कोई उमरा करके आना पड़ेगा फिर उसके बाद अल्लाह ताला रुजू कर सकते हैं? वरना उसके बगैर अल्लाह ताला ने मना कर दिया है कि नहीं, जब तक उमरा करके नहीं आओगे, चक्कर काट के नहीं आओगे, उस वक्त तक मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। सही, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं करना पड़ता उसके लिए। सही है, तो अल्लाह ताला से क्यों नहीं रुजू करता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य अल्लाह ताला ने किस्से के लिए तो नहीं दिया था ना, बेड टाइम स्टोरी, राइट? बेड टाइम स्टोरी तो नहीं था ये, इसीलिए था ना कि हम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला से रुजू करें, ठीक है? तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। सही है, फरमाया कि बेशक वो दुआओं का बड़ा सुनने वाला है, राइट? فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، هو السميع العليم، ठीक है ना भाई? आज इरादा कर लें कि आइंदा से हमने झूठ नहीं बोलना, बल्कि अल्लाह ताला से रुजू करना है, अल्लाह ताला से रुजू करना है। अगर हमने सिर्फ इतना कर लिया ना, झूठ बोलना हमने छोड़ दिया, अल्लाह ताला रुजू करेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? आप यकीन करें हमारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि झूठ बोलने से हमारे मसले शुरू होते हैं। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, इनफिरादी तौर पर, माशरती तौर पर, मुल्की तौर पर, पूरा का पूरा मुल्क झूठ बोल रहा होता है, और पूरे के पूरे मुल्क से जो है वो उसकी हुकूमत झूठ बोल रही होती है, राइट? अल्लाह माफ माफ करे हमारे झूठ को। उफ खुदाया, ये 75 साल की जो हमारी आजादी है ना, अगर इबरत की निगाह से देखें इसको, तो कितना झूठ है इसके अंदर, कितना झूठ है इसके अंदर। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो छुट्टी थी, पता है किसी को क्या छुट्टी थी? मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, कश्मीर डे की छुट्टी, कश्मीर डे की छुट्टी। सही है, क्या है ये कश्मीर में, क्या है ये? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। अल्लाह ताला से झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला से झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला से झूठ बोलते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमारे इस झूठ के साथ हमारे हालात ठीक नहीं किए अभी तक। अगर कर देता ना, तो फिर उसको कहते हैं ढील दे दिया जाना, ढील दे दिया जाना, और ये ढील देने के बाद तो फिर एक पकड़ आती है, फिर उसके बाद एक दफा पकड़ आती है, ठीक है? अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ढील नहीं दी हुई है। इन ओवरऑल यानी एक नेशनल लेवल के ऊपर अल्लाह ताला ने ढील नहीं दी हुई है। वैसे तो इंडिविजुअल हालात और इस तरह के हालात तो सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन चांद पे नहीं पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र। मैं इस लेवल पे बोल रहा हूँ कि हमें इतनी कोई तरक्की वरक्की नहीं दे दी कि हम चांद पे पहुंच जाते और हम जो है वो स्काई स्क्रेपर्स बना लेते, और हम जो है वो यानी बेहतरीन किस्म का एक मेट्रोपॉलिटन सिस्टम बना लेते, और इस ये मुराद है मेरी कि अल्लाह ताला ने ढील नहीं दी हुई। सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, पानी अभी भी खड़ा हो जाता है, और क्राइम का अभी भी बुरा बुरा हाल है, और यूटिलिटीज जो हैं वो अभी भी यानी सही नहीं चल रही हैं, और इस किस्म तो की हरकतें हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बदस्तूर बरकरार हैं, क्योंकि झूठ के साथ तो यही होना चाहिए, दुनिया दुनिया में भी यही होना चाहिए, ठीक है? तो अल्लाह ताला से रुजू, ठीक है जी? ठीक है भाई, इरादा करने पर एक नेकी तो मिलती है ना, बाकी करें ना करें वो तो बात की बात है, इरादा तो कर लेना अभी। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की मुख्तलिफ निशानियां देखने के बाद, जिनसे खुद तो इसका पूरा यकीन हो गया मगर आवाम में चर्चा हो गया था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो अल्लाह ताला की निशानियां देखी, तो इस अजीज मिस्र को तो यकीन हो गया था कि ये सच्चे हैं, और लेकिन अवाम में चर्चा हो गया था। तो चर्चा कैसे हुआ, वहां पे तो तीन ही लोग थे, ठीक है ना, तो वही औरतों वाली जो एक आदत होती है कि जी पेट में बात नहीं रहती, तो चर्चा हो गया, जैसे कि बाद में फिर वो चर्चा करती रही अपने मामलात का। तो उसको कता करने की गर्ज से उन लोगों को, यानी अजीज और उसके मुतअल्लिकीन को, यही मसलहत मालूम हुई कि उनको एक वक्त तक कैद में रखें, ठीक है, लयस्जुनन्नहु हत्ता हीन। ठीक है जी, खुलासे तफसीर के ऊपर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, 5 मिनट शायद हैं, तो हम मारुफ मसाइल पढ़ना शुरू करते हैं। फलम्मा समियत बिमकरहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना, यानी जब जुलैखा ने इन औरतों के मकर का हाल सुना तो उनको एक खाने की दावत पर बुला भेजा। यहाँ उन औरतों के तस्करा करने को जुलैखा ने मकर कहा है, हालांकि बज़ाहिर उन्होंने कोई मकर नहीं किया था, मगर चूंकि खुफिया खुफिया उसकी बदगोई करती थी, इसलिए उसको मकर से ताबीर किया। ठीक है, मकर का मतलब होता है प्लान करना, किसी के खिलाफ साजिश करना। तो इन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कि अब हम उसको बुलाएंगे और अब उसको हम फंसाएंगे और अब उसको हम ये करेंगे और वो करेंगे, इस किस्म की कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन इस तरह से जो ये जो खुसुर फुसुर और जो ये सरगोशी के अंदर बातचीत होती है ना, ये उस प्लानिंग का मुकदमा होता है। दिस लीड्स टू यानी विशियस प्लानिंग, ठीक है। तो इन्होंने मुकदमा वाला वाली हरकत करी थी, मुकदमा मतलब जो जो चीज उसकी कुक की तरफ लीड करती है। तो ये जो है ना, किसी के बारे में ऐसे जो है वो सरगोशियां करना, और उसकी जो है वो, यानी जिसके अंदर कोई कोई खैर की नीयत नहीं है आपकी, आपकी कोई खैर ख्वाही की नीयत नहीं है कि वो उसको उसके मुश्किल से निकालने की वजह से आप जो है वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को, आप जो है वो आपस में मशवरा कर रहे हैं, या जो है वो आप इबरत की नीयत से किसी के हालात को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको सिचुएशन का अंदाजा हो और आप खुद भी उसकी की हुई गलती से बच सकें और दूसरों को भी जो है वो बचा सकें कि भाई तुम ऐसी हरकत ना करना वरना तुम्हारा भी अंजाम वैसे ही होगा, ठीक है ना। ये नीयतें होती हैं कि जिससे कि तीसरे पर्सन के बारे में जो डिस्कशन है ना, वो फिर मकर में नहीं आती, या वो मकर के मुकदमे में नहीं आती, या तो उसकी खैरख्वाही के लिए मशवरा कर रहे हैं किसी से, ठीक है ना, या इबरत की नीयत के साथ जो है वो उसको डिस्कस करें। अब इबरत की नीयत जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने जब पेश की जाए ना, तो वो इबरत ही कहलाए, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से इबरत बोल रहे हैं और अंदर अंदर से जो है ना वो दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, इसको इबरत नहीं कहा जाता। ये नीयत वाला मामला है, और नीयत जो है वो इंसानों ने ही चेक करनी होती है, दुनिया के किसी इम्तिहान में आपने पास नहीं करवाना अपनी नीयत को, नीयत तो अल्लाह ताला के दरबार के अंदर तोली जा रही होती है, ठीक है। तो इबरत की नीयत के सारिज ने कह तो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इबरत का टाइटल लगा करके एवरीथिंग बिकम्स जायज, ठीक है। इबरत के लिए किसी तीसरे बंदे की सिचुएशन को डिस्कस करना जो है ना, ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं, ठीक है ना। इसके लिए एक धड़कने वाला दिल चाहिए, इसके लिए एक सेंसिटिव दिल चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए पत्थर की सिल नहीं चाहिए। अगर पत्थर की सिल है ना, जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता, जिस जो दिल सोज से खाली है, जो दिल सोज से खाली है ना, वो इबरत के साथ तीसरे बंदे को डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है ना, जिसको कि कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब वो इबरत का टाइटल दे करके अपने आप को धोखा ही दे रहा है, असल में वो इबरत के साथ किसी तीसरे बंदे को डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि उसके दिल के ऊपर कुछ असर नहीं है, उसको कोई किसी की परवाह नहीं है, उसको जो है वो किसी की खैरख्वाही नहीं है, उसको जो है वो ये भी नहीं है कि मैं कैसे जो है वो इस बुराई से खुद बच सकूं, अपनी औलाद को बचा सकूं, ये सब है ही नहीं इसके अंदर, बिकॉज उसके दिल के अंदर तो सिल लगी हुई है, पत्थर की सिल, ठीक है। तो मैंने जो जुमला कह दिया है ना, ये है बहुत बड़ा जुमला, कि इबरत की नीयत से तीसरे बंदे को डिस्कस करना ठीक है ना, ये इसके अंदर दाखिल नहीं है, लेकिन इतनी तफसील है इसके अंदर कि इबरत के साथ किसी के बारे में बात करना ये आसान काम नहीं है। तो वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अब इबरत का टाइटल लगा करके वी स्टार्ट डिस्कसिंग द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो मकर कहा, तो ये मकर का मुकदमा तो कर रही थी ना, तो वअअतदत लहुन्ना मुत्तका, यानी उनके लिए मसनद तकियों से मजलिस आरास्ता की। मसनद जहाँ पे आप बैठते हैं, सनद आपकी जो बेस होती है वहां पे, मसनद, मसनद उसका इसम ज़र्फ़ हुआ, और तकियों वगैरह से आरास्ता किया उस जगह को। मजलिस जो है वो जुलूस की जगह को मजलिस कहते हैं, यानी बैठने की जगह। वह आतत कुल्ल वाहिदत मिनहुन्ना सकीना, यानी जब ये औरतें आ गईं, उनमें से हर एक आ गई और उनके सामने मुख्तलिफ किस्म के खाने और फल हाजिर किए, जिनमें बास चीजें चाकू से तराश कर खाने की थी, इसलिए हर एक को एक एक चाकू भी दे दिया। आतत कुल वाहिद, हर एक उनमें से को चाकू भी दे दिया, जिसका जाहिरी मकसद तो फल तराशना था, मगर दिल में वो बात पोशीदा थी जो आगे आती है कि ये औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर हवास बाख्ता हो जाएंगी और चाकू से अपने हाथ जख्मी कर लेंगी। ठीक है, मतलब ये कितना इसको कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके ना ये फॉर श्योर अपना हवास, अपने हवास खो बैठेंगी। ठीक है, तो शी वॉज लाइक अ फॉरवर्ड थिंकर, है ना, कितना आगे जा करके इसने ये वाली बात सोची थी। वकालत खुरुज अलैहिन्ना, यानी ये सब सामान दुरुस्त करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से, जो किसी दूसरे मकान में थे, जुलेखा ने कहा कि जरा बाहर आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को चूंकि इसकी गर्ज़ फासिद मालूम ना थी, इसलिए बाहर इस मजलिस में तशरीफ ले आए। ठीक है, अब ये औरत जो है, देखें ये इसने इतनी प्लान तो इसने किया, मकर तो इसने किया ना, ठीक है ना, वो दूसरी औरतें तो मकर का मुकदमा कर रही थी, इसने तो एक्चुअली मकर मकर किया, तो इसने यानी इतना इसको बुरा लगा था के मोहल्ले की औरतें और जो है वो अशराफिया की जो औरतें हैं वो मेरे बारे में जो बातें कर रही हैं ना, वो मुझे बुरा भला कह रही हैं, इसको इतना बुरा लगा था कि शी मस्ट हैव थॉट डीपली अबाउट इट, है ना, उसने बहुत गौर से सोचा होगा कि मैं कैसे इन लोगों के सामने जो है ना वो प्रूफ कर दूं अपनी अपनी सिचुएशन को। ठीक है, तो यानी आप तसव्वुर करें ना कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसे बात कर रहा हो, तो ये एक मामूली बात तो नहीं है कि वो ऐसा प्लान करे और ऐसी एग्जीक्यूशन करे कि जिसके अंदर उसको 100% रिजल्ट मिल जाए, 100% रिजल्ट मिल जाए ना। तो जुलेखा वॉज 100% सक्सेसफुल इन व्हाट शी प्लान्ड, है ना, इजंट इट अमेजिंग, क्या जबरदस्त इसने प्लानिंग करी थी। तो फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वकत्तअना अयदियहुन्न वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, यानी इन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके जमाल से हैरान रह गईं और अपने हाथ काट लिए, यानी फल तराशते वक्त जब ये हैरत अंगेज वाकया सामने आया तो चाकू हाथ पर चल गया, जैसे कि दूसरी तरफ ख्याल बढ़ जाने से अक्सर ऐसा इत्तेफाक हो जाता है, और कहने लगी कि खुदा की पनाह, ये शख्स अल्लाह, ये शख्स आदमी हरगिज नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। मतलब ये था कि ऐसा नूरानी तो फरिश्ता ही हो सकता है। ठीक है, तो पहले भी जैसे बात हुई थी तर्जुमे के दौरान कि मलकुन करीम का जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इससे क्या पता चलता है कि इनके उस कल्चर के अंदर फरिश्तों के ऊपर बिलीफ था, और फरिश्ते जो है ना वो नूरानी मखलूक, और नूरानी मखलूक जो है वो यानी इमेजिनरी तौर पर लोग उनको खूबसूरत ही समझते हैं। ठीक है, तो अगरचे के ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, तो ये पेगन्स थे, यानी बहुत ही यानी बुत परस्त तो थे ही, लेकिन बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के इनके यहाँ जो है ना वो यानी इनके इनके बिलीफ सिस्टम्स थे, और अजीब अजीब, जैसे वो जैसे के एक एक क्या कहते हैं मेडन, है ना, गैर शादीशुदा लड़की को जो है ना वो जबाह करके दरिया नील के अंदर बहा रहे हैं। ठीक है ना, अब ये जबाह करके दरिया नील के अंदर बहाना ये मुशरिकीन मक्का इस किस्म की हरकत नहीं करते थे कि इंसान को ज़बह करके जाना, वो काबतुल्ला के सामने, कभी सुना आपने, कभी पढ़ा आपने कि काबतुल्ला के सामने जो है ना वो बकरे तो ज़बह करते थे, राइट, कुर्बानियों तो देते थे, लेकिन इंसान की कुर्बानी कभी भी आपने मक्का मुकरमा के अंदर नहीं सुनी, है ना। सीरत नबी आप उठा करके देखना, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी है। लेकिन इस किस्म की हरकतें फारस जैसे इलाकों के अंदर होती थी और इजिप्ट जैसे इलाकों के अंदर होती थी। तो ये जो पेगनिज्म था ना, ये बहुत ही अजीब गरीब किस्म की चीज थी, लेकिन इवन देन ये जो असल दीन इस्लाम था उसी की ही एक इंतहाई बिगड़ी हुई शक्ल थी, ठीक है ना। ये जितने भी बिलीफ सिस्टम दुनिया के अंदर है ना, ये सारे के सारे दीन इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्लें। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ कम बिगड़ी हुई शक्लें हैं, कुछ ज्यादा बिगड़ी हुई शक्लें हैं, और कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई शक्लें। कम बिगड़ी हुई शक्लें ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, ज्यादा बिगड़ी हुई शक्लें ये मक्का मुकरमा के मुशरिकीन, और बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई शक्लें ये जो है वो यही पेगन ट्रेडिशंस वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से किसी में से सब कुछ निकल गया, एक आधी चीज बच गई दीन इस्लाम की, किसी में से 90% बच गया, 10% निकल गया, किसी में से जो है वो 50% निकल गया। देखें, फरिश्तों के ऊपर जो ईमान था वो इनके अंदर अभी बाकी था, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था सर मैं फकीर। तो आगे चलते हैं कि कालत फदालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फीही वलक़द रावदतुहु अन नफ़सिही फ़स्तअसमा वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्ना वलयकूनन मिनस्सागिरीन, ठीक है। वो औरत बोली कि देख लो, वो शख्स यही है कि जिसके बारे में तुम मुझे बुरा भला कहती थी, और वाकई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की कोशिश की थी, मगर ये पाक साफ रहा और आइंदा ये मेरा कहना ना मानेगा तो बेशक जेल खाने भेजा जाएगा और बेइज्जत भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी बात हुई कि दीन इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्लें, ठीक है, तो इससे अब हमारे ऊपर कैसे ये चीज अप्लाई होती है, हमारे लिए इसके अंदर क्या टेक होम पॉइंट है, तो वो ये है कि ये जो बिगड़ी हुई शक्लें हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि बस एकदम से कोई 10% बिगड़ गया तो वो हमेशा 10% बिगाड़ के ऊपर ही रहेगा, एकदम से कोई जो है ना वो 50% बिगड़ गया, किसी किसी ने दीन इस्लाम को 50% बिगाड़ लिया तो अब वो 50% पे आके अटक गया, किसी ने 90% बिगाड़ लिया एकदम से तो वो 90% पे अटका हुआ, नहीं ऐसा नहीं होता। बल्कि बिगाड़ जो है ना वो 1% से या 0.1% से शुरू होता है, एंड देन इट फर्दर इंक्रीजेस, है ना, ये बिगाड़ बढ़ता है, ठीक है ना। तो अभी अगर कोई बिगाड़ आपको बहुत छोटा सा नजर आ रहा है ना, बजाहिर छोटा सा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिगाड़ उसी के ऊपर रुक जाएगा, बल्कि ये बढ़ता चला जाएगा। तो शुरू में ज्यूज एंड क्रिश्चियंस का बिगाड़ भी ज्यादा नहीं था, बहुत थोड़ा सा बिगाड़ था, लेकिन वो बढ़ता गया, हत्ता कि वो बिल्कुल ही शिर्क के अंदर और बिल्कुल ही यानी जहन्नुम वाले, और यानी वो अच्छे इंसान तो नहीं है ना वो ज्यूज एंड क्रिश्चियन, लेकिन विद इन जुडाइज्म एंड विद इन क्रिश्चियनिटी भी जो बिदआत हैं, अकीदे की बिदआत जिनकी वजह से वो काफिर हो गए, अकीदे की बिदत हो जाए जितनी भी थोड़ी सी भी हो काफिर हो जाते हैं, लेकिन फिर ये अकीदे की बिदतें बढ़ती हैं, या जैसे कि 25 दिसंबर, ये जो क्रिसमस का 25 दिसंबर है ये अर्ली क्रिश्चियनिटी के अंदर से तो नहीं था, तो बाद में जो है ना ये सेंटा क्लॉज भी उसके अंदर ऐड हो गया, बाद में जो है वो रेंडियर भी उसके अंदर ऐड हो गया, और बाद में जो है वो पता नहीं क्या क्या चीजें, ठीक है ना। तो ये बढ़ता गया, अगरचे के दे आर स्टिल नोन एज अहलुल किताब कंपेयर टू द अदर यानी मैनिपुलेटेड फॉर्म्स ऑफ इस्लाम, दे आर स्टिल कॉल्ड अहले किताब, ठीक है। लेकिन आज कहते हैं ना कि अहले किताब की औरत से शादी ना करना, पता नहीं वो अहले किताब है भी कि नहीं है, हालांकि ऊपर से क्रिश्चियन कहला रही है लेकिन वो अंदर से हो जाए वो एथियस्ट हो चुकी है, तो मना करते हैं हमारे में शायद औरत और ईसाई औरत से और यहूदी औरत से शादी करने के लिए। इसी तरीके से ना ये चीजें बढ़ती हैं, तो दीन को जो है ना उसको तो अपनी असल हालत के ऊपर ही प्रिजर्व रखना है, असल हालत की डेफिनेशन क्या है, दीन की असल हालत क्या होती है, हमारे दीन की असल हालत क्या है? कुरान और सुन्नत। किसकी सुन्नत? नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की सुन्नत। कुरान और नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की सुन्नत, ये है असल दीन। ये सब, ये पूरा का पूरा पैकेज जो है ना, ये है असल दीन, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा बिगाड़ पैदा करके उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हाँ भाई कुछ नहीं होता, अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ये बिगाड़ जो है ना, फिर ये बेसिकली इसने एक दरवाजा ही खोला है, खाली दरवाजा खुल गया, अब बिगाड़ जो है ना वो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। पहले जो है वो जूस की शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्रिश्चियंस की शक्ल इख्तियार कर सकता है, फिर जो है मुशरिकीन मक्का की शक्ल इख्तियार कर सकता है, फिर ये हिंदुओं वाली शक्ल इख्तियार कर सकता है, फिर उसके बाद जो है ये पेगनिज्म की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, ठीक है। तो दीन को तो असल शक्ल में ही प्रिजर्व करके रखना होता है, और यही जो है ना वो अल्लाह ताला के नजदीक जो कबूल दीन है ना, वो वही वाला कबूल है, ठीक है। चलें, किसी को कोई सवाल अगर नहीं है तो हम क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर होता तो आप पहले, टाइम हो गया है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।